मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 23 अक्टूबर 2017 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने 18 अक्टूबर के डेली ऑडियो में आप सबको सूचित किया था कि अब मेरी यहां 15 दिन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। देश भर से आए हुए स्टूडेंट्स, युवा, बिल्कुल लड़के और लड़कियां, जो अपनी आंखों में एक अलग तरह का सपना लिए हुए संघर्ष में लगे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हैं और उनसे लगातार बातचीत हो रही है और यह सिलसिला 15 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। और आप जानते हैं कि मेरे इन 15 दिनों का एक एक पल यहां आए हुए स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रहता है। इससे पहले जब क्लासेस होती थी तब जनरली इन 15 दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता था, लेकिन यह आप लोगों की मोहब्बत का असर है और आप लोगों की मांग का परिणाम है कि फिर हम लोगों ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि स्टूडेंट की एक आदत सी हो गई है और उनकी तैयारी में गैप भी नहीं आना चाहिए, तो भले ही थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन इन 15 दिनों में भी डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट की निरंतरता को बनाए रखा जाना चाहिए। और मित्रों, उसी निर्णय के तहत आप डेली ऑडियो लेक्चर डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन यह जितने भी ये ऑडियो लेक्चर होंगे ये सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड होंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये प्री रिकॉर्डेड हैं तो स्वाभाविक है कि फिर हम न्यूज की चर्चा नहीं कर सकेंगे, दूरदर्शन की भी खबरों की चर्चा नहीं कर सकेंगे और अखबारों में जो घटनाएं घट रही हैं, जो लेख आ रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स और दूसरी चीजें जैसे मिल रही थी वो एज इट इज मिलती ही रहेंगी, उन्हें मैं देखता रहूंगा। लेकिन मित्रों, व्यावहारिक स्तर पर मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं न्यूज सुनूं क्योंकि वो बहुत लंबा वक्त लेता है। मैं न्यूज सुनूं, सुनने के बाद उसके नोट्स लूं, दूरदर्शन की खबरें देखूं, फिर वहां से नोट्स लूं, 10-10, 12-12 अखबार पढ़ूं, फिर वहां से नोट्स लूं और फिर अपने लेक्चर का एक खाका दिमाग में बनाऊं और फिर रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं था, किसी भी हालत में संभव नहीं था। तो अब आप जितने भी डेली ऑडियो लेक्चर में विषय के बारे में सुनेंगे उसके बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है मित्रों। पहला तो यह कि वो बिल्कुल उसी दिन के ताजे न्यूज पर आधारित नहीं है, हम न्यूज की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हर डेली ऑडियो लेक्चर में आपको एक या दो टॉपिक पर बहुत ही एनालिटिकल और जरूरी जानकारियां सुनने को मिलेंगी, एनालिटिकल और जरूरी जानकारियां। और मित्रों, ये विषय ऐसे होंगे जिनका संबंध भले ही उस दिन या उससे एक दिन पहले की करंट न्यूज से न हो, लेकिन करंट अफेयर्स से जरूर हो। यानी कि ये ऐसे विषय होंगे जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी और यदि अभी नहीं भी पूछे जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जिस तरीके से चीजें बताई जाएंगी और जिन विषयों पर चीजें बताई जाएंगी, बातें की जाएंगी, वो आपके लिए लंबे समय तक काम की बातें होंगी। तो मित्रों, अब इससे आगे 11 तारीख तक यानी कि 6 नवंबर तक आप जो भी डेली ऑडियो लेक्चर के तहत सुनेंगे वो मानकर चलें कि प्री रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि यह बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं दोहराऊंगा। और ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि सुनते समय आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न हो, कोई भ्रम पैदा न हो कि आप ये क्या सुन रहे हैं। इसलिए तो दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए जो जिस विषय का मैंने चुनाव किया है वह है भारत में जाति, इसको लेकर के हम थोड़ी सी बातें करेंगे। ये आपके मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कास्टसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अभी अभी आपने एक घटना सुनी होगी कि केरल में एक मंदिर है, उसके लिए जो लिस्ट बनाई गई है और पुजारियों के लिए, उन पुजारियों में निम्न जाति के लोगों को भी चयनित किया गया है, वहां का अपना एक सिस्टम है। और इस टॉपिक पर आपको एक बकायदे करंट कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा केरल की इस घटना के ऊपर। तो दोस्तों इसी घटना को आधार बना करके फिर मुझे लगा कि नहीं, जाति के बारे में मुझे अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक बेसिक जानकारियां देनी चाहिए ताकि उनके पास कुछ तथ्य हो सकें और तथ्य ऐसे हों जिनके आधार पर वो विश्लेषण करने की स्थिति में आए। तो आइए मित्रों, इस विषय पर हम थोड़ी सी बातें करते हैं। मेरी समझ से आप सब ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, चलिए उसके प्रोसेस में हैं। शुरुआत से ही आप देखिए कि जब हम सोशल साइंसेस पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा ये हमें बताया जाता है कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है वो काफी पुरानी है। मतलब ये सच पूछे तो कुछ समय के बाद ही उत्तर वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल में तो हमें ये बात नहीं मिलती है। आप जानते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल का पीरियड है वो हम लगभग 1500 से 1000 मान करके चलते हैं और उत्तर वैदिक काल का पीरियड हम लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व की बात में कर रहा हूं, है ना, ईस्वी पूर्व। मतलब इसी समय में अब आप 2000 और जोड़ दीजिए तो लगभग पूर्व वैदिक काल 3500 साल पुराना होगा और उत्तर वैदिक काल लगभग 3000 साल पुराना होगा। उस समय की हमारी जो व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। आपको यहां वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंतर को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, राइट, तो उसमें चार वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में आप जानते हैं, यह है हमारी वर्ण व्यवस्था, है ना। मतलब ये चार वर्ग बनाए गए, मूलभूत सामाजिक वर्ग बनाए गए और इनके कार्य निर्धारित कर दिए गए कि जो ब्राह्मण है वो शिक्षा का काम करेंगे, जिसे अब हम एक तरीके से धर्म का काम मानते हैं, उस समय धर्म ही शिक्षा थी या शिक्षा ही धर्म था, जो भी कह लीजिए। जो क्षत्रिय है वो शासन करेंगे और सेना में जाएंगे, व्यवस्था देखेंगे। जो वैश्य है वो बेसिकली उत्पादन और व्यापार का काम करेंगे और जो शूद्र है वो श्रम प्रधान काम करेंगे। ये चार व्यवस्थाएं की गई। आगे चलकर समाज में परिवर्तन हुए, समाज का विकास हुआ, समाज में बदलाव आए और फिर इन चारों वर्णों की से जातियों का जन्म हुआ है। समझिए कि जातियां जो पैदा हुई हैं इन वर्णों से हुई हैं। अब आप देखिए कि ब्राह्मण, तो आपको ब्राह्मणों में भी कई उपजातियां मिल जाएंगी, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, क्षत्रियों में मिल जाएंगे आपको, वैश्य में मिल जाएंगे, शूद्र में, निम्न जातियों में भी आपको दुनिया भर की उपजातियां मिल जाएंगी। तो यानी कि जो बेस प्रोवाइड किया जाति के लिए वह वर्ण व्यवस्था ने किया है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, राइट। अब हुआ क्या कि मित्रों, वर्ण तो चलिए अपने आप में जो कुछ था था ही, मतलब उसे तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये जो जातियां बनी उसने वर्ण व्यवस्था का और ज्यादा बुरा हाल कर दिया। मतलब वर्ण व्यवस्था को हम लेकर के चले तो ये मान करके चले कि समाचार भागों में विभाजित है, लेकिन जब जातियां बनने लगी और जातियों की जब उपजातियां बनने लगी तब तो समाज पता नहीं कितने कितने खंडों में विभाजित हो गया, खंडों में विभाजित हो गया। और जब इस तरह से समाज खंडों में विभाजित हुआ तो व्यवस्थाएं भी उसी तरह से होने लगी, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हो या धार्मिक व्यवस्थाएं हो। यहां तक धार्मिक व्यवस्थाओं में भी ये कह दिया गया कि इस जाति का जो व्यक्ति है वो वेद का नहीं सुन सकता, इस जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, जिसके दुष्प्रभाव हम आज तक देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। मित्रों, इसी में जो सबसे जो एक और बुरी स्थिति हुई, यानी कि जाति और उपजाति तक बात खत्म हो गई, जो स्थिति आई वो थी छुआछूत की, अस्पृश्यता की। यह बहुत बुरी स्थिति थी। यानी कि चौथा जो वर्ण था शूद्र वर्ण में, जो निम्न तरह के काम करने वाले, हम कह देते हैं निम्न तरह के काम करने वाले जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि वो चमड़े, मृत पशु के चमड़े उतारने का काम कर रहे हैं, अंत्येष्टि वगैरह का काम कर रहे हैं, नाली की सफाई का काम कर रहे हैं, इस तरह के, जिसे हम ये मानते हैं कि ये थोड़ी से बहुत ज्यादा अस्वच्छ काम है कह लीजिए, उनको अस्पृश्य में डाल दिया गया। अस्पृश्य का मतलब है कि इनका स्पर्श नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण वर्ग था वो तो इसका बहुत ज्यादा पालन करता था, उनको ऐसा लगता था जैसे कि उनका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि एक और संकट पैदा हो गया। और दोस्तों, ये जो जाति और उपजाति व्यवस्था थी, यह भारत के समाज की एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने हमारे समाज की शक्ति को बहुत ही कमजोर कर दिया, हर दृष्टि से कमजोर कर दिया। हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ी, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारी सफल हुए, यहां तक कि हमारी जो आर्थिक शक्ति थी वह भी बहुत कमजोर पड़ी। अब आप सोच सकते हैं कि आर्थिक शक्ति कैसे कमजोर पड़ेगी। आर्थिक शक्ति इस रूप में कमजोर पड़ी कि एक बहुत बड़े वर्ग की योग्यता का लाभ हम उठाने की स्थिति में रही नहीं गए। एक बहुत बड़े चंक को, बहुत बड़े भाग को हमने अस्पृश्य मान करके या शूद्र वर्ण में डाल करके, निम्न श्रेणी समझ करके उसे हमने उस तरीके का काम सौंप दिया। और यह भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकते। ये उनकी जिंदगी भर की पहचान बन गई। मतलब अगर योग्य से योग्य व्यक्ति भी किसी निम्न जाति में पैदा हो गया है तो वह अब अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता। तो आपको नहीं लगता है कि हम इस प्रतिभा से वंचित हो गए? और हमारे सामने ऐसे प्रमाण हैं, इतिहास में भरे पड़े हैं ऐसे प्रमाण। यहां तक कि अगर हम बहुत पुराने पुराण के युग में चले जाएं, ब्राह्मण आरण्यक के उपनिषद के युग में चले जाएं, तो उस समय ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, जिनकी हम आज पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो जन्म है वो तथाकथित निम्न जातियों में हुआ है। तो पूरी तरह से हमने अपने समाज को उनकी प्रतिभा से वंचित कर दिया। इनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया या शिक्षाओं को सीमित कर दिया गया। तो इनकी जो योग्यता जो उभरनी चाहिए थी, जो कुशलता आना चाहिए था, जिसे हम आज के समय में स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़े वर्ग को हमने कम उत्पादक वर्ग का बना दिया। और अगर वो कम उत्पादक है तो सीधी सी बात है कि हमने समाज की जो आर्थिक संभावनाएं हो सकती हैं उन आर्थिक संभावनाओं को रोक दिया, खत्म कर दिया। मित्रों, ये लगभग चलता रहा। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हमारे समाज सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान इधर गया। अगर आप बहुत पहले देखें तो जो बौद्ध धर्म आया, बेसिकली बौद्ध धर्म इस जाति प्रथा के खिलाफ उठाई गई एक जबरदस्त दार्शनिक आवाज थी, जबरदस्त दार्शनिक आवाज थी। इसके बाद फिर मध्य काल में हम देखते हैं जो भक्ति काल आया है, जिसमें रामानुजाचार्य, रामानंद जैसे लोग हुए, कबीरदास जैसे लोग हुए हैं, इन्होंने धार्मिक भेदभाव और जाति भेदभाव का बहुत जबरदस्त रूप से विरोध किया। तो चेतना शुरू से रही है कि यह सही नहीं है और इसको खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक जकड़न इतनी ज्यादा थी कि इसे खत्म करना आसान नहीं था। और आज भी आप देख रहे हैं उसके अभिशाप को कि इतना आसान नहीं रह गया है। मित्रों, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहे थे तो डेफिनेटली तब तक आधुनिक चेतना पैदा हो चुकी थी। पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में भी डेमोक्रेसी की बात कही जाने लगी थी। समानता स्वतंत्रता का जो फ्रांस का नारा था, आंदोलन का, फ्रांस की क्रांति का, पूरी दुनिया में गूंज रहा था। तो अगर सभी स्वतंत्र हैं और सभी समान हैं तो फिर ये जाति व्यवस्था क्यों? तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके खिलाफ एक समानांतर लड़ाई चलती रही। इसके आगे पीछे भी आपको समाज सुधार के रूप में दूसरे संस्थान दिखाई देते हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज। हमें कुछ ऐसे समाज सुधारकों के नाम भी मिलते हैं जिसमें ईवी रामास्वामी पेरियार थे, जो जिन्होंने साउथ में इसके लिए बहुत काम किया। श्री नारायण गुरु ने बहुत काम किया, ज्योतिबा फूले ने बहुत काम किया। ये सब जाति व्यवस्था को खंडित करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे और इसके विरोध में खड़े थे। और बाद में जो बाबा साहब आम्बेडकर जब आए तो उनके नाम से, उनके काम से आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जब संविधान बना तो आप देखिए कि संविधान में बाकायदा संविधान में उस जाति प्रथा को, जाति व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की गई। कोशिश क्या की गई है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जो समानता का मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता को सीधे सीधे खंडित किया गया है, उसको अवैध ठहराया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं की गई जो हमारे जितने भी अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के, स्पेशली आप देखिए 14, 15, 16, 17 इनको आप देखिए, और इसके बाद 21 जिसमें इसे सीधे सीधे असंवैधानिक, अवैधानिक ठहराया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच हम इस मायने में सफल हो सके हैं? या मैं थोड़ी सी आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताता हूं। मित्रों, चलिए, आप सब अभी जो जाति व्यवस्था की स्थिति है वो सब आप जानते हैं। कभी कभी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हमें अखबारों में पढ़ने में आते हैं कि खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ ज्यादा ही जीवित है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब ये कम हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने यह बताया था फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होगा तो हमारे संबंध बदलते चले जाएंगे और फिर ये जाति व्यवस्था खुद खत्म हो जाएगी। जैसे आप शहरों को देखिए, इस सिद्धांत को आप शहरों पर लागू करके देखिए कि आप एक होटल में जाते हैं और वहां भोजन करते हैं, राइट? क्या भोजन करने से पहले आप ये पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि तुम आपका रसोईया किस जाति का है? आप नहीं पूछते। जो भी भोजन आपके सामने आता है आप बस इसका ध्यान रखते हैं कि साफ सुथरा भोजन हो, अच्छा भोजन हो, दैट्स ऑल। लेकिन जब हम घर में रसोईया रखने की बात करते हैं, अभी भी मतलब मैं ही समझ लीजिए कि अगर होटल में जाता हूं तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर घर में रसोईया रखूंगा तो सबसे पहले जाति पूछूंगा। तो आप देखें कि किस तरीके से एक साथ अभी दो धरातल पर जो हमारी चेतना है जाति को लेकर के काम कर रही है। निजी स्तर पर वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर वो धीरे 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 काफी टूट रही है। और आप देखिए कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें हरियाणा वगैरह के खाप पंचायतों की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं कि अगर किसी एक जाति के लड़के ने दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली या वाइस वर्सा हो गया तो उन्हें कितनी बड़ी सजा दे दी जाती है। तो ये बातें, ये घटनाएं ये बताती हैं कि अभी भी जाति व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, दो चीजें अच्छी हो रही है। पहली बात है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वह जाति व्यवस्था को लेकर के काफी उदार है, वह इसे उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। शहरी क्षेत्रों में तो यह काफी कुछ कम हो भी गया है। दूसरी बात है कि जो हमारे संविधान का इतना बड़ा सहारा मिला हुआ है समाज को कि उसको आधार बनाकर वह इसके खिलाफ खड़े होने में हिचक महसूस नहीं कर रही है, यूं कह लीजिए कि अपने को असहाय महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उसके साथ प्रशासन की शक्ति है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे जो आचार विचार व्यवहार, यहां तक कि प्रशासन शब्द का मैंने भी इस्तेमाल किया, प्रशासन में भी राजनीति में भी आपको बकायदे वो जातिवाद दिखाई देगा, बकायदे जातिवाद दिखाई देगा। भले वो चाहे वो आरक्षण के माध्यम से धीरे से घुस गया है और आगे चलकर के बड़ा हो जाता है। राजनीति के तहत आप देखते ही हैं कि जब चुनाव की बात आती है, चाहे वो राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, तो कैसे ये देखा जाता है कि इस संसदीय क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, संख्या में ज्यादा हैं, और उसी आधार पर फिर अपने कैंडिडेट खड़ा किया जाता है उसी जाति का। तो इस तरह की चीजें चूंकि अभी भी समाज में है, इसलिए सच पूछिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारतीय समाज से जाति प्रथा समाप्त नहीं हो सकी है। लेकिन एक संतोष की बात है, देखिए हजारों साल से, 3000 साल से भारतीय समाज की नसों में ये जाति प्रथा की चेतना बह रही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अचानक खत्म हो जाएगी। लेकिन एक संतोष की बात, एक काफी बड़े संतोष की बात यह है, इसकी जकड़ तो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। और जैसे जैसे जो निम्न जाति के लोग हैं आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न होते चले जाएंगे, डेफिनेटली यह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ करके, और लेट अस होप, उम्मीद करते हैं कि एक दिन खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में ये मैंने जाति व्यवस्था के बारे में कुछ बातें आप लोगों से की हैं, और बेहतर होगा कि आप इस टॉपिक पर किसी किताब से पढ़ भी लें तो मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर में जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसे समझने में और आसानी होगी। आप मान करके चलिए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।